पेश है आज के मुख्य समाचार विशारी जैन के साथ। गठबंधन का नया वादा, मिलेंगे आसानी से घर, वहीं लेबर ने ध्यान केंद्रित किया उत्पादन के क्षेत्र पर। भारत में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आज दूसरा दिन, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज एंड्रू साइमंड्स का सड़क दुर्घटना में हुआ निधन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ब्रिस्बेन में लिबरल पार्टी के चुनावी कैंपेन के लॉन्च पर एक नई हाउसिंग योजना की घोषणा की है। सुपर होम बायर स्कीम के तहत पहली बार घर खरीदने वाले लोग अपने सुपर एनुएशन के 40% हिस्से तक को या अधिकतम $50,000 तक की घर की खरीदी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 55 वर्ष से अधिक के लोग अगर बड़े घरों को बड़े परिवारों के लिए छोड़ छोटे घर में शिफ्ट होते हैं तो $3,00,000 तक अपने रिटायरमेंट के लिए पा सकते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि ये योजना नए और पुराने दोनों घरों के लिए लागू होंगी और सुपर एनुएशन से निकाला गया पैसा घर की बिक्री की सूरत में वापस सुपर एनुएशन में लौटा दिया जाएगा।
Is there to help Australians in their retirement. The evidence shows that the best thing we can do to help Australians achieve financial security in their retirement is to help them own their own home.
फेडरल नेता प्रतिपक्ष एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि फेडरल सरकार के चक्के पटरी से उतरने लग गए हैं। चुनावी कैनवेसिंग के दौरान ब्रिस्बेन में समर्थकों को संबोधित करते हुए श्री अल्बनीजी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड, लेबर कोषाध्यक्ष जिम चामर्स, ब्रिस्बेन की स्थानीय उम्मीदवार मडोना जैरेट और क्वींसलैंड की प्रीमियर एनास्तासिया पलाशे भी नजर आए। पार्टी सत्ता में आने पर ऑस्ट्रेलियाई उत्पादन उद्योग में $1 बिलियन का निवेश करने का वादा कर रही है। श्री अल्बनीजी का कहना है कि इस फंडिंग से ऑस्ट्रेलियाई उत्पाद की नींव को मजबूत किया जाएगा और इस क्षेत्र में नई नौकरियां भी पैदा होंगी। इसमें परिवहन, रक्षा, फूड प्रोसेसिंग, चिकित्सा और रिन्यूएबल क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा, स्कॉट मॉरिसन एक बुलडोजर हैं जबकि वे एक बिल्डर हैं।
He said he was a bulldozer, and when it was pointed out that a bulldozer kind of wrecks things, knocks things over, today he's changed again. Today he's likened himself to a car. Well, if this government is a car, it's been stalled for a long, long period of time.
गठबंधन बचर खुली प्रोग्राम के लिए अतिरिक्त $3 मिलियन का निवेश करेगी। पूर्व AFL रिचमंड और एसेंडन खिलाड़ी बचर हुली, जो कि एक मुस्लिम है, के नाम पर शुरू की गई ये योजना नौजवान मुसलमान लोगों को खेल के जरिए उन्नति के अवसर देती है। फैमिलीज एंड सोशल सर्विसेज मंत्री एंड्रिस्टन का कहना है कि इस अतिरिक्त फंडिंग से 5,000 नए नौजवान ऑस्ट्रेलियाई इस कार्यक्रम से जुड़ पाएंगे। इस फंडिंग से योजना का विस्तार विक्टोरिया के बाहर न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी किया जा सकेगा। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि वे फेयर वर्क कमीशन में न्यूनतम वेतन में कटौती ना करने की अर्जी दायर करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम वेतन पाने वालों को ऑस्ट्रेलिया में रहना बहुत मुश्किल है। श्री अल्बनीजी ने पहले कहा था कि न्यूनतम वेतन में 5.1% की बढ़त होनी चाहिए। ABC के इनसाइडर्स कार्यक्रम पर नेता प्रतिपक्ष ने यह तो साफ नहीं किया कि वे कमीशन के सामने कोई सार्थक आंकड़ा रखेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वे चुनावी वादों से मेल कि वे उनके चुनावी वादों से मेल खाते एक फैसले का वे स्वागत जरूर करेंगे।
We will put a submission to the Fair Work Commission. They'll take submissions until June the 7th, and that submission will say that people who are on the minimum wage can't afford to go backwards.
दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड में कम होती बारिशों के बावजूद भी कुछ हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में पिछले 48 घंटों में 200 से 300 मिलीमीटर के बीच बरसात हुई है। राज्य में सबसे अधिक 179 मिलीमीटर बरसात ब्रिस्बेन और सनशाइन कोस्ट के बीच स्थित बेलथॉर्प में हुई। जिम्पी से होकर गुजरने वाली मैरी नदी के जलस्तर को 16 मीटर तक पहुंचने की आशंका बताई गई है, जिससे टियारो कस्बे में बड़ी बाढ़ आ सकती है। कॉन्डामाइन, लोगन, ब्रेमर रिवर्स, वरिल, लैडली और लोकेयर क्रीक्स के लिए बाढ़ की चेतावनी अब भी जारी है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। विदेश मंत्री नाटो सभा के लिए बर्लिन पहुंचने लगे हैं। संगठन अब फिनलैंड और स्वीडन को संगठन से जुड़ने के इरादे पर चर्चा करेगा। इसी के साथ यूक्रेन के मसले पर बिना सीधे तौर पर बीच में पड़े कैसे मदद की जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि फिनलैंड का संगठन में शामिल होना एक भारी गलती होगी, जबकि तुर्की विदेश मंत्री मेवलुट कवुसोग्लू ने कहा है कि इस कदम का समर्थन करना अमान्य है और चौंकाने वाला है। श्री कवुसोग्लू का कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन तुर्की पर हमला करने वाले आतंकवादी संगठनों का घर हैं, पर नॉर्वेजियाई विदेश मंत्री एनिकेन हुटफेल्ट ने कहा है कि उनका समर्थन नॉर्डिक देशों के साथ है।
We don't know what Turkey really means, but from Norwegian perspective, we are 100% behind Finland and Sweden if they decide to apply for membership in NATO, and this will also strengthen the Nordic cooperation. Because we've chose differently after the Second World War, so I think that this is a historic moment right now.
एक 18 वर्षीय पुरुष प्रथम दर्जे की हत्या के आरोप में अमेरिका की एक कोर्ट में पेश किए गए हैं। उन पर न्यूयॉर्क स्टेट के बफलो शहर में 10 लोगों की गोली मारकर हत्या और 3 को घायल करने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने इस हमले को नस्लवाद से प्रेरित हिंसक कट्टरवाद बताया है। इस आरोपी की पहचान कॉन्क्लिन के पेटन जेंड्रॉन के रूप में की गई है। कॉन्क्लिन बफलो से करीब 320 किलोमीटर दूर एक समुदाय है। बफलो पुलिस कमिश्नर जोसेफ ग्रमगालिया ने कहा है कि आरोपी ने टॉप्स फ्रेंडली मार्केट्स में हुए इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए घंटों गाड़ी चलाकर बफलो तक की यात्रा की थी।
He exited his vehicle. He was very heavily armed. He had tactical gear. He had a tactical helmet on. He had a camera that he was live streaming what he was doing. The individual exited his car and engaged 4 individuals. He shot 4 people in the parking lot. 3 of those were deceased. 1 individual at this time is surviving the injury. The individual went inside, as I said, he was an 18-year-old white male, walked into the store and began engaging customers inside the store.
आरोपी को बिना बेल के हिरासत में ले लिया गया है और अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। और अब खबरें भारत से। कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुए ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे का आज दूसरा दिन है। सर्वे की कार्यवाही भारतीय समय से सुबह 8 बजे से शुरू होनी थी। वादी और प्रतिवादी पक्ष के साथ प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। इनकी मौजूदगी में सर्वे का कार्य संपन्न किया जाएगा। बता दें कि कल जिलाधिकारी की मौजूदगी में मस्जिद में 20 मिनट तक सर्वे किया गया था। ये सर्वे मस्जिद के बेसमेंट में किया गया। मस्जिद पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद ने सर्वे के बाद कहा कि अंदर बेसमेंट में एक गेट का ताला खुला लेकिन एक का ताला तोड़ना पड़ा। उन्होंने बताया कि अंदर कोई खास चीज नहीं देखने को मिली। उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वे का काम आज पूरा हो जाएगा। इस काम में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, इसके लिए 3 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को इलाके में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और वहीं जो लोग अंदर हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि आज अगर सर्वे का काम पूरा हो जाता है तो मंगलवार तक वकील कोर्ट में रिपोर्ट दायर कर देंगे। दूसरी ओर भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 2487 नए मामले सामने आए हैं। ये कल के मुकाबले 12% की कमी है। कल कोविड के कुल 2841 नए मामले भारत में सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में देश में कुल 13 लोगों की कोविड से मृत्यु भी हुई है, लेकिन मौत के आंकड़ों में आज केरल के 8 मामलों का बैकलॉग भी जोड़ा गया है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.73 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 69 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज एंड्रू साइमंस की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वे 46 वर्ष के थे। क्वींसलैंड पुलिस का कहना है कि श्री साइमंस बीती रात 10:30 बजे के करीब टाउन्सविल शहर के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। माना जा रहा है कि वे एलिस रिवर ब्रिज के नज़दीक हर्वी रेंज रोड पर थे, जब उनकी गाड़ी अचानक सड़क से उतरकर पलट गई। पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे लेकिन श्री साइमंस को बचा नहीं पाए। एंड्रू साइमंस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास में अपना एक अलग मकाम रखते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट मैच, 198 वनडे और 14 2020 मैच खेले। 2012 में उन्होंने सक्रिय क्रिकेट की दुनिया से विदा ली थी। शेन वॉन और रॉड मार्श की अचानक हुई मृत्यु के बाद श्री साइमंस इस साल अचानक गुजरने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। और अंत में एक नजर कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम की हाल पर। पर्थ में कल धूप छांव का मौसम बना रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 18 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल बारिश की आशंका बताई गई है। अधिकतम तापमान 17 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 18 जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं सिडनी में कल धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल हल्की बारिश बताई गई है। यहां अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव के साथ उमस भरा मौसम बना रहेगा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 जबकि न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।